अनफॉर्चुनेटली हमने ना तो माँ का डर रहने दिया, ना बाप का डर रहने दिया, ना उस्ताद का डर रहने दिया, हम मदर पिदर आजाद कौम बन गए।
जी हाँ, जो लोग पाबंदी भी कर रहे हैं, घरों में बैठ गए हैं, बाहर नहीं निकलते, वो उन्होंने भी घरों में जो मेले लगाए हुए हैं, ये भी ठीक बात नहीं है।
अल्लाह ताला खैर
बैठ के वो मेला ठेले लगे हुए हैं जिस तरीके से, वो उनको भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए मेरे ख्याल में।
बहुत शुक्रिया, खबर नहीं हाशमी साहब, हम दिल हमारा उदास हुआ होता, हमने कहा हम आपसे कोई खट्टी मीठी बातें सुन लें, मगर पाकिस्तान से दूर रहते हुए पाकिस्तान से मोहब्बत भी होती है और दिल चाहता है अपने घर की अच्छी बात ही सुने, कोई बुरी बात अपने घर की ना सुने। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। टॉप ऑफ द आवर, वेलकम बैक, स्टूडियो का नंबर 416-602-0178 हमारा नंबर है।
ਘਰ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਟਰ, ਬਲਾਈਂਡਸ, ਵਰਟੀਕਲਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਹਨੀਕੈਂਪਸ, ਪਲੀਟਡ ਸ਼ੇਡਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ। ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੇਡਸ ਆਊਟਲੈਟ .com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 416-803-1043 416-803-1043 द ब्लाइंड शेड्स आउटलेट .com।
किचन या फिर बाथरूम दी रेनोवेशन ते इक्को ही नाम याद रखो, जी के ग्रेनाइट एंड मार्बल। कस्टम किचन कैबिनेट्स, बार्स, वैनिटीज या फिर कस्टम काउंटर टॉप्स, होवे वुडवर्क या फिर होवे ग्रेनाइट और मार्बल दे काउंटर टॉप्स, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4, यानी बेशुमार वैरायटी, बेहतरीन कस्टमर सर्विस, क्वालिटी वर्क और कीमत ते बहुत ही मुनासिब। 7171 टोरब्राम रोड, मिसेस सागा, ताड़ा अपना कीरत। कॉल करो 6475343789 6475343789 GK
Granite Marble। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन तो एक सुनेहा, COVID-19 पेंडेमिक दौरान तुहाडी सरकार अपनी कम्युनिटी दी सेहत अते तंदुरुस्ती दी सुरक्षा लई काम कर रही है। टैक्स पेमेंट्स तो ट्रांजिट सर्विस, हर विषय ते जानकारी लैण लई 1 अप्रैल दिन बुधवार नूं शाम दे 5:30 बजे होण वाले टेलीफोन टाउन हॉल नाल जुड़ो ते मेयर ब्राउन, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, पील पब्लिक हेल्थ, विलियम ऑसलर हेल्थ सिस्टम, पील रीजनल पुलिस सर्विस अते पील रीजनल पैरामेडिक सर्विस नाल गलबात करो। रजिस्ट्रेशन www.brampton.ca/covid19 ते कीती जा सकती है। शामिल होवो 1 अप्रैल नूं होण वाले टेलीफोन टाउन हॉल विच।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
आप कनाडा से पाकिस्तान पैसे भिजवाना चाहते हैं और वो भी फौरन जबरदस्त रेट्स के साथ और आराम से घर बैठे, आपको ये सब मिलेगा बगैर कॉम्प्रोमाइज के। अभी डाउनलोड कीजिए Zoom मनी ट्रांसफर ऐप फ्रॉम PayPal, दैट्स XOOM Zoom, और अपने मोबाइल से पैसे भेजिए अमेजिंग एक्सचेंज रेट्स के साथ। बैंक डिपॉजिट्स, कैश पिकअप या मोबाइल रिचार्ज, अब पाकिस्तान पैसे भेजें उंगली के इशारे से। Zoom, a PayPal service, तेज, आसान और महफूज मनी ट्रांसफर।
वेलकम बैक अगेन, 7:26 और 26 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं, 7:15 इंशाल्लाह ताला हमारा और आपका साथ रहेगा। मैं आगे चलता हूँ आपको एक खूबसूरत कलाम की जानिब, दुआ है ये और जनाब जुनेद जमशेद साहब की आवाज़ में समा फरमाइए।
करे कोई हो देखना तो दीदाए दिल, वाह करे कोई अड़ बैठे क्या समझ के भला तूर पर कलीम, ताकत हो दीद की तो तकाजा करे कोई। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सर
سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و حوس نے مار ڈالا ہے، متائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت حوس کی بھینٹ چڑھوا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں، تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روسیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، یہ تیرا گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، صبح غرتے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبانے بے زبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔
جی صاحب اکرم، ابھی آپ نے سماعت فرمایا جناب جنید جمشید صاحب کی آواز میں بہت ہی خوبصورت کلام، اور اس کے ساتھ ہی بس وقت آیا آپ سے اجازت چاہنے کا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے پروگرام کو سننے کا، پسند کرنے کا اور ہمارا ساتھ دینے کا۔ جن لوگوں کے کالز نہ لے سکے بھائی، ان لوگوں سے معذرت خواہ ہیں۔ اور چلتے چلتے ایک گزارش، ایک التجا جو ہمیشہ میں کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا، کہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھا کریں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خاص طور سے ہمارے دوست، ہمارے بھائی مظفر علی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ان کے ساتھ وہ تمام لوگ جو اپنا سفر مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند کرے، انہیں جنت الطرف دوست میں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بشرط زندگی، ان شاء اللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات۔ اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔
مانگتا ہوں عطا، مانگتا ہوں۔ تجھ سے دعا مانگتا ہوں, عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے عطا مانگتا ہوں, کرم مانگتا دعا مانگتا ہوں, جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر, جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا, مسرور رکھنا, بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا, پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں, پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں, پریشان پناہ مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں,
اصل داستان نفرتوں کے دروازے ان پہ بند ہی رکھنا, اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا, یہ وطن تمہارا تمہوں پاس تمہارا تمہوں نرم سکھے, یہ وطن تمہارا ہے تمہوں پاس بڑھ سکے,
To listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it.
This station is now the ultimate power in the universe.
The station with the
best music.
Best music.
I love the music.
Best music.
I love radio, music, and more.
आप सुन रहे हैं रेडियो साज आवाज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 24/7 हमारे रेडियो और टीवी की सर्विस के लिए विजिट कीजिए eawaz.com या फिर आज ही eawaz ऑफिशियल ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए। लोकल लाइन पर रेडियो सर्विस के लिए डायल कीजिए 6475571017। eawaz टीवी को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं। इसके अलावा आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री। हमारे साथ शामिल रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हम खूबसूरत, दिलकश, मजाया, मालूमती और मजेदार प्रोग्राम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एडवर्टाइजमेंट या फीडबैक के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 6478986245 6478986245। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमेशा की तरह BBC न्यूज से सेरविन के साथ।
मैं हूं आलिया नाज़ की। आज सेबीन का अहम मौजू है, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बदस्तूर बढ़ रही है, हलाकतें 20 से भी बढ़ गई हैं, हुकाम का मुकम्मल कर्फ्यू लगाने पर भी गौर। इंडिया में मुकम्मल लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों में काम करने वाले मजदूर अपने घरों की तरफ पैदल निकलने पर मजबूर, पैदल चलने वालों में 20 अफराद हलाक। और स्वीडन में कोरोना वायरस से 100 से ज्यादा हलाकतें, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत का लॉकडाउन जैसे सख्त इकदामात से गुरेज। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस और इससे पैदा शुदा बीमारी COVID-19 की शिद्दत बढ़ रही है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके मुकाबले के लिए पाबंदियां भी बढ़ाई जा रही हैं। सुबह सिंध में, जहां पाकिस्तान में सबसे पहले इस वबा के वाकयात सामने आना शुरू हुए थे, मरीजों की तादाद में इजाफे की रफ्तार कुछ कम होती महसूस हो रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 1700 के नजदीक पहुंच रही है, लेकिन माहिरीन को खदशा है कि असल तादाद मालूम केसेस से कहीं ज्यादा है, क्योंकि टेस्टिंग की सहूलियात बआसानी दस्तियाब नहीं है। मुल्क में इस मर्ज के बायस हलाकतों में भी इजाफा हो रहा है और मरने वालों की तादाद भी 21 हो चुकी है। मुख्तलिफ सूबों में हुक्काम इस मर्ज से मरने वालों के लिए कब्रिस्तानों में भी खुसूसी मकामात मुख्तस कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक जिन लोगों में शुरू में इस वायरस की तशखीस हुई थी, उनमें से कई अब सेहतियाब होना शुरू हो रहे हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक अब तक 30 के लगभग लोग तशखीस के बाद मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। सूबे पंजाब मुल्क भर में अब मरीजों की तादाद के लिहाज से सबसे ज्यादा मुतासर सूबा बन गया है और हुकाम वहां कोरोना वायरस के फैलाव का मुकाबला करने के लिए अब मजीद सख्त इकदाम पर गौर कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ लाहौर से बजरिए स्काइप बराह रास्त मौजूद हैं हमारे नामनगार तरहब असगर। तरहब, सबसे पहले तो यही बताएं कि पंजाब में इस वक्त अब ताजा तरीन सूरत हाल क्या है?
आलिया, अदाद शुमार के मुताबिक अब तक जो है 638 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं पंजाब में, और पंजाब क्योंकि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है वो भी एक वजह है। उसके साथ साथ जो है अमवात तकरीबन 7 के करीब पंजाब में जो लोग हैं वो कोरोना वायरस के बाइस जो है जिनकी मौत भी हुई है। और फिलहाल जो है ये मसला इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है कि अगर हम उसका एनालिसिस करें तो पिछले 2-3 दिन में काफी तेजी से जो है फिगर्स उसमें इजाफा हो रहा है, तकरीबन 70 से 80 के करीब रोजाना की बुनियाद पे, और पिछले एक आधे दिन में तो 100 से भी ज्यादा अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस के जो हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं।
अच्छा तरहब, आज एपेक्स कमेटी काबीना वगैरह की मीटिंग्स भी थी, उनमें कुछ तय पाया है, कोई तफसीलात सामने आई है?
आलिया, जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया कि सिंध में पहले ज्यादा रिपोर्ट हुए थे, लेकिन सिंध में जो रिस्ट्रिक्शंस थी और कर्फ्यू जो है उसमें काफी सख्ती है जिसके बाइस चीजें थोड़ी कंट्रोल हुई हैं। पंजाब में जो एक सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से ये केसेस में इजाफा भी तेजी से हो रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस लॉकडाउन इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट उन्होंने स्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से आज जो है एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है जिसमें ये भी तय पाया गया है कि हम इन रिस्ट्रिक्शंस को मजीद सख्त करेंगे और उन एरियाज को भी सील करेंगे जहां पे ये तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो फिलहाल जो है अभी पंजाब सिक्योरिटी के हवाले से भी रिस्ट्रिक्शंस करना चाह रहा है, उसके साथ साथ जो है इकोनॉमी इमदादी पैकेज भी मुतारिफ कराए जा रहे हैं, लेकिन फिल वक्त तक जो है मैनेजमेंट के लिहाज से जो है बहुत ज्यादा कोई वाजे किस्म के बयानात अभी तक सामने नहीं आ सके।
अच्छा तरह, जैसा कि आपने भी कहा कि पंजाब में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आपने कहा कि इकदाम शायद मजीद सख्त करने पड़े, क्या आगही के हवाले से भी मसाइल हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रही कि हालात कितने संगीन हैं?
जी, आप ये भी कह सकते हैं कि एक नॉन सीरियस बिहेवियर भी कहीं कहीं देखने में आए, लेकिन अब जो है हमने पिछले कुछ दिनों में ये चीज जो है ऑब्जर्व भी की है कि लोग इस चीज को समझना शुरू हो गए हैं। उसके साथ साथ जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है उसके एजेंसीज जो हैं इदारे डिपार्टमेंट्स वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, बताया जाए, लेकिन फिल वक्त तक जब तक सख्ती नहीं ज्यादा बढ़ाई जाएगी लगता नहीं है कि लोग घरों से बाहर निकलना बंद करें।
और अब कुछ मजहबी इज्तिमात के मकामात को भी करंटीना मराकज या क्वारंटीन सेंटर्स बनाने के बारे में भी इत्तला है?
जी बिल्कुल, कुछ हफ्ते पहले ये भी कहा जा रहा था और बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी इस बात के ऊपर कि जो राइविंग में एक बहुत बड़ा इज्तमा होता है उसको ना किया जाए, लेकिन फिर भी वो 2-3 दिन गुजर गए वहां पे, जिसके बाइस अब जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जो तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो राइविंग में मौजूद थे उनकी एक काफी बड़ी तादाद है जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सामने आ रही है, और ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में तबलीगी जमात में राइविंग पहुंचने वाले अफराद में कोरोना की तशखीस हो रही है। तो ये भी एक वजह है, और हुकूमत ने जो है फिल वक्त जहाँ पे वो मौजूद है जिन मसाजिद में
लाहौर से, जी
वहाँ पे उनको
लाहौर से। तरहब असगर, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस की वबा फूट पड़ने के बाद बाकी दूसरे मुल्कों की मानिंद पाकिस्तान में भी हुकाम ने इसका फैलाव रोकने के लिए जो हिफाजती इकदाम किए हैं उनमें तालीमी इदारों की बंदिश सर फहरस्त रही है। तालीमी इदारों की बंदिश के बाद एक तरफ तो कुछ तालिब इल्म घर बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ बहुत से इंटरनेट के जरिए तालीमी सिलसिला जारी रखने की कोशिशों में है, लेकिन बहुत से मकाम पर इंटरनेट कनेक्शन की सुस्त रफ्तार इसमें आड़े आ रही है। मज़ीद तफसील के लिए देखिए नामनिगार काशान अकमल की ये रिपोर्ट।
हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज और उनके रिहायशी हॉस्टल्स को खाली कराने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के दूरदराज खुसूसन देही इलाकों से आए हुए स्टूडेंट्स को अपने आबाई इलाकों को वापस जाना पड़ा था, और अब उन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने में इंटरनेट सर्विस की बंदिश या बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है।
सबसे पहला जो मसला है वो है इलेक्ट्रिसिटी का मसला। दिन में सिर्फ आपको 4 से 5 घंटे बिजली मिलती है और उस वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग्स फिक्स्ड होती हैं, तो आपके लिए क्लासेस अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता। जो दूसरा मसला है वो है इंटरनेट का मसला, और ये बहुत बड़ा मसला है। गिलगित बल्तिस्तान के हर घर में इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। इंटरनेट ना होने की वजह से ना आप क्लासेस अटेंड कर पाते हो, ना आप अपनी प्रेजेंटेशन कर पाते हो, ना आप अपने टाइम पे असाइनमेंट्स सबमिट कर पाते हैं। और जो हमारा इस दफा का जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होगा वो भी हमारे असाइनमेंट्स के बेसिस पे होगा। असाइनमेंट्स करना यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च के बगैर, इंटरनेट के बगैर, लाइब्रेरी फैसिलिटी के बगैर करना पॉसिबल नहीं होता। ये एक और बड़ा मसला है हमारे लिए।
मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। मैं कोरोना आउटब्रेक की वजह से कराची से पंजाब में ट्रैवल किया और मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की तरफ से ऑर्डर आया कि आप ऑनलाइन क्लासेस लें। तो ऑनलाइन क्लासेस के बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। पहला तो ये कि इंटरनेट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, दूसरा ये कि आपको एक एनवायरमेंट नहीं मिल पाता जो क्लास का एनवायरमेंट होता है, तीसरा ये कि आपका वो फोकस नहीं रहता जो कि आप क्लास में होके क्लास के अंदर का एनवायरमेंट और घर के एनवायरमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। और फोकस, क्योंकि जब टीचर सामने हो खड़ा होके पढ़ा रहा होता है तो वो फोकस और होता है और घर में आपका ध्यान हर चीज पे जा रहा होता है।
तकरीबन 2 वीक से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जिसमें बिल्कुल कोई लर्निंग नहीं हो रही है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, इंटरनेट इशू बहुत हो रहा होता है, कभी टीचर की तरफ से कभी स्टूडेंट्स की तरफ से, और कभी कभार तो हम ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे होते क्योंकि इतनी गंदी क्वालिटी होती है इंटरनेट की।
एक अपनी मिसाल बताता हूँ, मेरा घर अभी लॉकडाउन की सूरत हाल में, मैं विलेज में रह रहा हूँ, तो मैं डेली 25 से 30 किलोमीटर सफर करता हूँ और मैं क्लास लेने सिटी आता हूँ क्योंकि इंटरनेट विलेज में नहीं है। तो इस वजह से रास्ते में मुझे बहुत से सोल्जर्स, मतलब पुलिस मुझे रोकती रहती है।
बीबीसी से बात करते हुए कुछ तुलबा ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर ये बताया कि उनके निजी तालीमी इदारों की जानिब से फीसों की अदायगी का मुतालबा किया जा रहा है, जो कि इन हालात में उनके वालदैन के लिए हरगिज मुमकिन नहीं है। इस हवाले से जब हमने वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद से बात की तो उनका कहना था कि हायर एजुकेशन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और ऑनलाइन क्लासेस से मुतल्लिक तुलबा की शिकायत का हल निकाल सकता है। फीसों के हवाले से उनका कहना था कि इसकी वजह निजी तालीमी इदारे अपने अखराजात और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी बताते हैं, ये एक बहरानी कैफियत है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत आइंदा 2 से 3 दिनों में ये फैसला करेगी कि इस मसले के हल में वो क्या किरदार अदा कर सकती है।
हमारे फेसबुक पेज पर आएं, वहां आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तज़िये और अहम खबरें सब मिलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, हमारा हैंडल है @bbcurdu। सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि पड़ोसी मुल्क इंडिया में कोरोना वायरस से निमटने के लिए किया गया लॉकडाउन क्यों हदफ तनकीद है। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद, मैं हूं आलिया नास की। इंडिया में मुकम्मल लॉकडाउन का आज 6ठा दिन है। पूरे मुल्क में ट्रेनें, बसें, दुकानें, दफातर, रेस्टोरेंट्स सब बंद हैं। इंडियन हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जब 4 घंटे का नोटिस देते हुए मुकम्मल मुल्क की लॉकडाउन का ऐलान किया था, तो उसी वक्त मुल्क के बड़े शहरों में दिहाड़ी वाले लाखों मजदूरों और उनके अहले खाना ने अपने अपने इलाकों को वापसी की खातिर लंबे फासलों, बल्कि बसा औकात तो कई 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना शुरू कर दिया था। एक अंदाजे के मुताबिक इंडिया के मुख्तलिफ रास्तों पर दसियों लाख मजदूर एक साथ पैदल चल रहे हैं और रास्ते की मुश्किलात के बायस इनमें से 20 की तो मौत भी हो गई है। हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि क्या लॉकडाउन करने का ये तरीका सही था। इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं हमारे नामनिगार शकील अख्तर। शकील, सबसे पहले तो यही बताएं, इस वक्त अब इंडिया में ताजा तरीन आदादोशुमार क्या है, कितने केसेस हैं इंडिया में?
देखिए, पिछले 24 घंटे में 92 नए केसेस आए हैं। मजमूई तौर पर ये तादाद जो कोरोना वायरस से जो मुतासर मरीज हैं वो 1071 हो गई है और मजमूई तौर पर अब तक जो अमवात हुई हैं उनकी तादाद 29 है और इनमें से 100 मरीज सेहतियाब होकर हॉस्पिटल से फारिग भी कर दिए गए हैं।
अच्छा शकील, लॉकडाउन के बाद जो मजदूर और वर्कर्स जो अपने घर जाने के लिए पैदल निकल पड़े हैं, उनकी सूरत हाल क्या है, उनका स्टेटस क्या है?
دیکھیے وہ اتنا خوفناک منظر تھا جو اچانک لاک ڈاؤن جس وقت ہوا تھا پچھلے منگل کو پچھلے ہفتے، اس وقت صرف 4 گھنٹے ملے تھے، ساری ٹرین بند کر دی گئیں، ساری بسیں بند کر دی گئیں، ہوائی سروسز بند کر دی گئیں، تو یہاں جو صورتحال تھی اس 4 گھنٹے میں کوئی کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ غالباً یہاں پر کسی کی ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ جو کروڑوں مزدور ہیں، جو ڈیلی ورکرز ہیں، جو ڈیلی ویجز والے ہیں، جو ورکرز ہیں، وہ کہاں جائیں گے، اور اگر خاص طور سے جو ان کے کام بند ہو گئے ہیں، انہیں پیسے نہیں مل رہے ہیں، انہیں رینٹ والے انہیں باہر کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا بحران اختیار بن چکا تھا، اور کل تک بڑی بہت مشکل صورتحال تھی۔ لیکن اب جو وزارت داخلہ کی طرف سے یہ چاروں طرف ہر ریاست کو یہ حکم دیا گیا کہ جو بھی ورکرز جس جگہ پر شاہراہوں پر ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے عارضی ریلیف کیمپ بنائے گئے ہیں جس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ روک دیا گیا ہے انہیں، اور اس کے علاوہ ساری سرحدیں ریاستوں کی بند کر دی گئی ہیں۔
اور شکیل، لاک ڈاؤن کا 6 دن ہے تو کتنا مؤثر ہے؟ کوئی انیشل اسیسمنٹ، ابتدائی طور پر کوئی جائزہ لیا گیا ہے کہ اس سے واقعی کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے میں کوئی مدد مل بھی رہی ہے؟
دیکھیے، ایک تو یہ لاک ڈاؤن بہت سخت سے سخت کیا جا رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو جو ہے اس پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان کی خلاف ورزیوں کے سلسلے میں۔ آج جو وزارت صحت کی جو روزانہ کی بریفنگ ہوتی ہے، اس میں ایک بہت ہی اہم بات یہ بتائی گئی کہ جو 1000 کیسز جو بنے ہیں یہاں پر، جو 1000 مریض جو متاثر ہوئے، وہ 12 دنوں کے اندر یہ 1000 کی تعداد پہنچی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی 12 دن کی مدت میں امریکہ اور یورپ کے جو ترقی پسند ممالک ہیں جن کے ہاں بہتر سہولیات ہیں، وہاں پہ یہ تعداد جو ہے 3000 5000 6000 یا 8000 تک پہنچی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ ایک مثبت سمت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ روزانہ کی جنگ ہے جو جاری رہے گی۔
دلی سے شکیل اختر، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں، یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی، پتہ ہے bbc.com/اردو۔ سویڈن میں کرونا وائرس سے اب تک 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن یورپ کے بیشتر ممالک کے برعکس سویڈن میں ابھی تک لاک ڈاؤن جیسے سخت اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ وہاں ریسٹورینٹس، کیفے اور بار کھلے ہوئے ہیں، اور بچے ابھی بھی بدستور اسکول جا رہے ہیں۔ تو کیا موجودہ حالات میں یہ صحیح قدم ہے، اور سویڈن کی حکومت سخت اقدامات سے گریز کیوں کر رہی ہے؟ اسٹاک ہوم سے ماری ساوج کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں خدیجہ عارف۔
سویڈن کی دارالحکومت اسٹاک ہوم میں طویل سردی کے بعد اب موسم خوشگوار ہوا ہے، لوگ گھروں سے باہر اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
باہر موسم خوشگوار ہے، مجھے ریسٹورینٹس اور بارز کو کھلے رکھنے میں مدد کرنا اہم لگتا ہے۔
میرے خیال سے دکانوں کا کھلا ہونا اچھی بات ہے، میں خود کو تنہا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جب یہاں لوگوں کو باہر نکلتے دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا کرنا مشکل لگتا ہے۔
سویڈن میں 50 لوگوں کے ایک ساتھ جمع ہونے پر پابندی ہے، لیکن سخت قوانین کا نہ کی برابر نفاذ کیا گیا ہے۔ حکومت کا زور ابھی بھی غیر ضروری سفر نہ کرنے اور گھر سے کام کرنے جیسی ہدایات پر ہے۔ یہاں حکومت کی پالیسی کی توجہ ابھی بھی اس بات پر ہے کہ عوام خود ہی اس وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے احتیاط برتے اور اپنی طرز زندگی میں ضروری تبدیلیاں کرے، لیکن حکومت کی اس پالیسی کی تنقید بھی ہو رہی ہے۔
میرے خیال سے ہمارا حکومت پر بہت زیادہ یقین ہے، اور لوگ حکومت کی ہدایات سنتے بھی ہیں، لیکن اب حالات نازک ہیں، معلوم نہیں کہ یہ ہدایات کافی ہیں یا نہیں۔
سویڈن میں لوگوں کو باہر گھومنے کا بہت شوق ہے، حکومت عوام کی جسمانی اور ذہنی صحت کو خیال میں رکھتے ہوئے ہی لاک ڈاؤن سے گریز کر رہی ہے، اور امید کر رہی ہے کہ اس سے معیشت بھی بہت زیادہ متاثر نہیں ہوگی۔
In general, the business community, I would say, thinks that...
عام طور پر سویڈن کی تاجر برادری کو لگتا ہے کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں ان کی حکومت کی پالیسیاں زیادہ حقیقت پسندانہ ہیں۔
How much riskier do you think it is?
آپ کے خیال میں ان ممالک کے لیے کتنا نقصان دہ ہے جنہوں نے اس سے زیادہ بزنس بند کیے ہیں؟
اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، ان ممالک میں بڑی سطح پر بے روزگاری بڑھے گی، اور سماجی سطح پر جو اثرات ہوں گے ان کو سوچ کر مجھے ڈر لگتا ہے۔
یہ ہیئر سلون عام دنوں میں لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اب اس کے مالک کو اپنے بل ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اور یہاں کام کرنے والوں کو فکر ہے کہ اگر سویڈن کی حکومت نے بھی باقی یورپی ممالک کی طرح سخت قوانین کا نفاذ کیا تو انہیں گھر بیٹھنا ہوگا۔
آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سربین کا بڑا موضوع کرونا وائرس کی عالمی وبا خصوصاً پاکستان کی صورتحال تھا۔ اس مرض کی شدت پاکستان میں بڑھ رہی ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں اس کے مقابلے کے لیے پابندیاں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ صوبہ سندھ میں جہاں پاکستان میں سب سے پہلے اس وبا کے واقعات سامنے آنا شروع ہوئے تھے، مریضوں کی تعداد میں اضافے کی رفتار کچھ کم ہوتی محسوس ہو رہی ہے، جبکہ اس وقت ملک میں سب سے زیادہ کیسز صوبہ پنجاب میں ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianaz۔ کی آج سیبین میں اتنا ہی، آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹویٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/اردو دیکھتے رہیے۔ alianaz کی کو اجازت دیجیے۔
آپ سن رہے ہیں ریڈیو ساز آواز براڈ کاسٹنگ سروس 24/7۔ ہمارے ریڈیو اور ٹی وی کی سروس کے لیے وزٹ کیجیے eawaz.com یا پھر آج ہی eawaz آفیشیل ایپ اپنے اسمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ لوکل لائن پر ریڈیو سروس کے لیے ڈائل کیجیے 6475571017۔ eawaz ٹی وی کو آپ تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہی روکو ایپ اپنے اسمارٹ ٹی وی میں ڈاؤن لوڈ کیجیے بالکل فری۔
اپنے مکان کی نیکسٹ منتھ کلوزنگ ہے، کچھ سوچا ہے ٹی وی اور اپلائنسز کہاں سے لینے ہیں؟
ہاں، برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز، جہاں اسپیشل سیل چل رہی ہے۔ ٹی وی، فریج، واشر ڈرائر، کچن رینج ہوڈ، مائکرو ویو، سارا کچھ مل جائے گا بہت ہی ریزنیبل پرائس پہ۔
سیل تو اب چل رہی ہے پر ہمیں چاہیے نیکسٹ منتھ۔
آج کے ریٹ ہم لاک بھی کروا سکتے ہیں۔
دیٹس ونڈرفل۔
وہاں سے سیل فون اور انڈیا بھیجنے کے لیے 220 وولٹ کا سارا سامان بھی مل جائے گا۔
برمپٹن میں یہ کہاں پہ ہے؟
آن بوے ہیڈ، جسٹ ویسٹ آف میکلاگلن۔ ٹیلی فون 9054502828 اور وزٹ برمپٹن اپلائنسز۔
دانتوں کو لے کے پریشان تو میں کر دیتی ہوں آپ کی مشکل آسان۔ فیملی ڈینٹسٹری میں ایکسپرٹ ڈاکٹر غزالہ زید سے ملیے۔ A graduate from University of Pennsylvania from America. Extremely polite and comfortable with all age groups. اب بتائیے اپنا مسئلہ انگلش، اردو یا ہندی میں۔
بک یور اپوائنٹمنٹ ناؤ ایٹ 416-945-1000 416-945-1000 اینڈ وزٹ سیڈر برے میڈیکل سینٹر ایٹ 3630 لارنس ایونیو ایسٹ سکارو۔ اپنے دانتوں کا کروائیں علاج ڈینٹسٹ ڈاکٹر غزالہ کے ساتھ۔
California shutters, blinds, verticals, roller shades, honeycombs, pleated sheets. گھر کی خوبصورتی اور جدت کے علاوہ الیکٹریسٹی بل میں واضح کمی۔ نئے گھروں کے لیے خاص رعایت، کوئی بھی ریٹرن پرائس کو میچ یا پھر بیٹ کریں گے 100% وارنٹی۔ 30 سال سے کیلیفورنیا اور بلائنڈز کے بزنس سے وابستہ۔ The blinds and shutter outlet .com 416-803-1043 416-803-1043
Asian Food Center 905-793-1338 آپ کے کچن کی تمام ضروریات ایک ہی چھت تلے۔ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز، گروسریز اینڈ سٹیبلز، بریڈ، ڈیری اینڈ ایگ، بیوریج اینڈ کنفیکشنری، برانڈیڈ فوڈ، پرسنل کیئر اینڈ ہاؤس ہولڈ، سویٹس اینڈ سموساز۔ Order now for in-store free pickup 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center 905-793-1338. Asian Food Center.
گھر لینا ہو یا پھر لسٹ کرنا ہو، عارفہ مظفر کو کال کرو۔
انویسٹمنٹ کرنے کا گھر ہو ارادہ،
عارفہ مظفر کو کال کرو۔
برسوں سے جانا پہچانا قابل اعتماد نام ریئل اسٹیٹ کی کسی بھی ضرورت کے لیے کال کیجیے 6478986245 6478986245 سٹی اسکیپ ریئل اسٹیٹ کی۔
عارفہ مظفر کو کال کرو۔
खाने का इंतजाम तो बहुत ही जबरदस्त है और मेन्यू भी कमाल का है, बनाया भी कितना लजीज है।
ये सब कमाल है किराना हट का, दावत हो तो किचन बहुत खूब करते हैं और अगर वैसे बाहर खाना खाने को दिल चाहे तो समझो हर उम्र की पसंद किराना हट पर मौजूद। और हाँ, एक और बात, इस खाने के बाद गारंटीड नो हार्टबर्न।
किराना हट का मुझे भी नंबर दें, हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है।
किराना हट मिसेस सागा में, बस कॉल कर लीजिए 9054058383 4058383
Dreams helped make my wedding perfect. I had exactly what I wanted and they made it possible.
जी हाँ, ये है ड्रीम कन्वेंशन सेंटर जिनके पास है तीन शानदार बॉल रूम्स, 50 से लेके 1300 अफराद के बैठने की जगह, हाई क्वालिटी इंटरनेशनल क्यूजीन, स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडियो विजुअल्स, इवेंट कोऑर्डिनेशन, हाईली ट्रेन स्टाफ, खास दिन को बनाए यादगार ड्रीम कन्वेंशन सेंटर के साथ। ऑनलाइन बुकिंग या फिर आ जाएं ड्रीम कन्वेंशन सेंटर, 75 हेजडेल रोड, ब्रैम्पटन, 9054515100
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्लर के इंटरसेक्शन पे। बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साज और आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, 9054578661।
मेरी लाइफ है तेज रफ्तार, गाड़ी और फोन सर्विस जो भागे सबसे तेज, मगर
मगर क्या,
पाकिस्तान पैसे भेजने के लिए मेरे पास है सबसे स्मूथ सर्विस।
आपको यकीनन लॉयल एक्सचेंज की सर्विस की जरूरत है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों में पैसे भेजने के लिए सबसे रिलायबल और फास्टेस्ट कैश पिकअप, एनी बैंक डिपॉजिट, वायर ट्रांसफर।
लॉयल एक्सचेंज का कोई एड्रेस?
जी हाँ, लॉयल एक्सचेंज सर्व करते हैं दो लोकेशन से, थॉर्नक्लिफ के बाद अब पिकरिंग में भी, 2085 ब्रॉक रोड नॉर्थ पिकरिंग। लॉयल एक्सचेंज कॉल 416-837-2675
तो मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है।
सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिले एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा, हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में, आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स, 7086 एयरपोर्ट रोड माल्टन में, रूबी ज्वेलर्स।
नायग्रा फॉल की सैर करने के बाद जाइए टेस्ट ऑफ बॉम्बे, ऑथेंटिक पाकिस्तानी एंड इंडियन हलाल कुजीन, वेज नॉन वेज बारबेक्यू आइटम्स और खास आइटम कीमे वाले पराठे, एंजॉय करें ताजा मजेदार और दिलकश माहौल में। टेस्ट ऑफ बॉम्बे इन नायग्रा फॉल्स, 5780 Ferry Street, Niagara Falls, 905-357-5946, 905-357-5946.
क्या आप जानते हैं कि आप विदेश पैसा भेजकर $50 पा सकते हैं? CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ आप $0 ट्रांसफर फी पर पैसा भेज सकते हैं और अब अपने पहले ट्रांसफर पर पाइए $50। अपना ग्लोबल मनी ट्रांसफर ऑनलाइन या CIBC बैंकिंग केंद्र से भेजें, शर्तें लागू। CIBC बैंकिंग दैट फिट्स योर लाइफ।
मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खसूसी बुलेटिन। ये बुलेटिन आपको बताएगा कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं। इसके साथ ही साथ आप इस बुलेटिन से ये भी जान पाएंगे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के क्या आदाद शुमार हैं और सूरत हाल अब किस नहज पर जा रही है। आप ये बुलेटिन हर पीर से जुमा हमारे साथ देख सकते हैं और जान सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और ये इजाफा फिल वक्त रुकता कहीं दिखाई दे भी नहीं रहा। अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो इस वक्त 1600 से जायद ऐसे केसेज हैं जो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के हैं और 20 से जायद हलाकतें, बल्कि 20 ही हलाकतें जो हैं अब तक रिपोर्ट की जा रही हैं हुकूमत पाकिस्तान के जो पोर्टल है उस पर। आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, اس پر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کورونا وائرس سے متاثرین کی جو تعداد ہے وہ 590 سے زائد ہو چکی ہے. صوبہ سندھ جو ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو صوبائی حکومت کی طرف سے لگائی جانے والی جو پابندیاں ہیں اس کے بعد جو فگر سامنے آ رہے ہیں وہ 500 سے زائد افراد کے متاثر ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں 190 سے زائد مریضوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے. بلوچستان میں بھی ملک کے دیگر حصوں کی طرح حالات کچھ بہت اچھے دکھائی نہیں دے رہے اور 140 سے زائد افراد اب تک کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں. گلگت بلتستان میں 125 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں, جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 5 سے زائد کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں. حکومتی پابندیوں اور احتیاط پر عوام کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں, اس کی ایک شکل ہمیں آج خیبر پختونخوا سے اس وقت دیکھنے کو ملی جب وزیر اعلی خیبر پختونخوا کے ترجمان تیمور خان جھگڑا نے پشاور کی سڑکوں کی فضا سے لی گئی کچھ تصاویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی. ان تصاویر میں جو ہے بالکل دیکھا جا سکتا ہے کہ پشاور جیسا گنجان آباد شہر اور اس کی بارونق سڑکیں بالکل ویران پڑی ہیں. اسی اپنی ٹویٹ کے ساتھ تیمور جھگڑا یہ لکھتے ہیں کہ ان سب کا شکریہ جنہوں نے حکومت, صوبے اور ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ان سڑکوں کو خالی چھوڑ دیا ہے. ترجمان اب مزید لکھتے ہیں اپنے ٹویٹر کے ساتھ کہ آج کا دن کام کا دن ہے, لیکن سڑکوں پر بمشکل ہی کوئی زی شعور نظر آ رہا ہے. اس کے بعد سندھ کا رخ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا جا رہا ہے. تو سندھ حکومت نے صوبے کے نادار اور غریب لوگوں کی مالی امداد کے لیے موبائل رجسٹریشن سسٹم جو ہے وہ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے تحت غربا کو رقم جو ہے وہ جائز کیش ٹرانسفر کے ذریعے دی جائے گی اور سندھ حکومت یہ منصوبہ نادرا کے ساتھ مل کر کر رہی ہے تاکہ درست افراد کی نشاندہی ہو سکے اور کسی بھی قسم کا کوئی سکینڈل, کوئی سکیم جو ہے سامنے نہ آئے بعد میں. بیرون ملک سفر کرنے والا یہ اکاؤنٹ میں یا اکاؤنٹ میں مناسب رقم رکھنے والا جو شخص ہے اس مدد کا مستحق نہیں ہوگا. سندھ حکومت کے کورونا وائرس سے نمٹنے کے اقدامات اور اس کے سولوشنز یہاں پر رکتے نہیں ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی وہ تھی سندھ پیمنٹ ایکٹ کا نوٹیفیکیشن, جس میں کہا یہ گیا ہے کہ تمام نجی ادارے اور فیکٹریاں 31 مارچ تک ملازمین کی تنخواہیں ادا کر دیں. ادارے ڈیلی ویجز, کانٹریکٹ اور مستقل ملازمین کو تنخواہ ادا کرنے کے بھی پابند ہوں گے. نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تنخواہوں کے معاملات سے ریلیٹڈ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے یا وہ اپنی کوئی شکایت درج کرانا چاہتا ہے تو سیسی کا ایمرجنسی سیل بنا دیا گیا ہے. یہاں پر وہ تمام ملازمین شکایت کر سکتے ہیں جنہیں کسی قسم کی بھی کسی بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. واضح ہے کہ نوٹیفیکیشن وزیر محنت سعید غنی کی ہدایت پر سیکرٹری محنت نے جاری کیا ہے. اس کے بعد ملک کے دیگر حصوں میں کیا صورتحال ہے, اب ہم جائزہ لیتے ہیں ایک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا. سندھ اور خیبر پختونخوا کی صورتحال ہم نے اچھی طرح سے جانی, لیکن پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, وہاں سے آنے والی خبروں کا فلو ہم تک ابھی اتنا نہیں رہا, اس لیے ہم آج آپ کو اس سے زیادہ اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہاں پر کورونا وائرس کی سچویشن باقی ملک سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور وقت سے پہلے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. مجموعی تعداد وہاں پر کیا ہے, کیسز کی اور صورتحال کیا ہے, اسی پر بتا رہے ہیں ہمیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر صحت اور فوکل پرسن ہیں یہ برائے کرونا ڈاکٹر نجیب نقی.
سے سعودی عربیہ سے ایران سے جو ہمیں اس کی ڈیٹیل ملی وہ تقریباً 26,000 کے قریب لوگ تھے جو 15 فروری کے بعد سے آج تک جو یہاں داخل ہوئے, تو ان کو ہم نے دوبارہ ان کو ری وزٹ کرنے کے لیے, اسیس کرنے کے لیے. جب ہمارا ایک پازیٹو کیس آیا تو ہم نے ایک قسم کا لاک ڈاؤن کا سٹارٹ اس وقت سے ہم نے سٹارٹ لے لیا تھا, اسی لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے ہی کسی اور جگہ سے شفٹ ہوں گے, ہماری لوگ جو باہر سے ہیں وہ اس کو لے کے وبا کو آزاد کشمیر میں آئیں گے, تو ہم نے اس کو بڑا فوکس کیا اور اس پہ ہم بڑے اسٹرکٹلی کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم فوکس کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ ضرورت پڑی تو ہم اور اسٹرکٹ اس کے اوپر ہوں گے.
ابھی آپ نے گفتگو سنی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کیا حالات ہیں. اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے سٹیٹسٹکس کو فالو کرنا چاہتے ہیں اور تازہ ترین صورتحال سے خود کو اپڈیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں تو www.covid.gov.pk وہ ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو اپڈیٹڈ سٹیٹسٹکس ملیں گے پاکستان کے. پاکستان کے مختلف حصوں کی اپڈیٹس کے بعد اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس کی کیا صورتحال ہے اور اسے بچاؤ سے متعلق کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اسی کا جائزہ لے رہے ہیں لندن میں موجود ہمارے ساتھی خالد کرامت.
दुनिया भर में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और अमवात के लिहाज से इटली इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। वहाँ पर तकरीबन 11,000 के करीब अफराद की हलाकत हो चुकी है। इटली में हुकाम का कहना है कि केसेस और अमवात इस वक्त ऊंची तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। इटली में केसेस की पीक हो चुकी है और उनका ख्याल है, उनके अंदाज़ों के मुताबिक आने वाले दिनों में इन केसेस में कमी आएगी। इस वक्त इटली में तकरीबन 1,00,000 के करीब कोरोना अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और अगर इसका मवाजना जर्मनी से किया जाए तो वहाँ पर केसेस 60,000 से तजावज़ कर चुके हैं, लेकिन अमवात की शरह जो है काफ़ी कम है। तकरीबन 550 के करीब अफराद इस मर्ज से हलाक हुए हैं और इस बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं कि इसकी क्या वजह है। तो जर्मनी ने बहुत ही जल्दी और बहुत बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू की और मरीज़ों की निशानदेही करना शुरू की और यही नहीं, इटली और फ्रांस और बरतानिया के मुकाबले में जर्मनी में तिबी सहूलियात ज़्यादा हैं। और अगर टेस्टिंग का जिक्र किया जाए तो बरतानिया में हुकाम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग नहीं की जा रही। इस वक्त तकरीबन 10,000 अफराद को रोज़ाना टेस्ट किया जा रहा है और तिबी अमला शिकायत कर रहा है कि ना तो उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है बल्कि उनकी भी टेस्टिंग उस तरह नहीं की जा रही जिस तरह होनी चाहिए है। और अगर इन्फेक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका इस वक्त दुनिया में जहां सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं वो मुल्क बन चुका है। तकरीबन 1,50,000 अफराद जो हैं कोरोना वायरस से वहां मुतासर हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क में 750 से ज़्यादा अफराद की हलाकत हो चुकी है और हाल ही में ऐलान किया गया है कि जो पाबंदियों का सिलसिला है अमरीका में उसे अप्रैल के आखिर तक जो है बढ़ा दिया गया है। और जो सूरत हाल इस वक्त दुनिया में बढ़ रही है कोरोना वायरस के हवाले से तेज़ी से, उसका मुकाबला करने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं वो है वेंटिलेटर्स और इनकी शिद्दत से कमी का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ बरतानिया में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और फॉर्मूला 1 कार कंपनी मर्सिडीज़ ने मिलकर एक नई डिवाइस बनाई है जो वेंटिलेटर की तरह ही काम करती है और मरीज़ को सांस लेने में मदद दी जाती है उससे, और उम्मीद की जा रही है कि इसकी इस डिवाइस से जो वेंटिलेटर्स की कमी है उसको किसी न किसी तरह पूरा किया जा सकेगा।
अगर आप दुनिया भर से के बदलते हुए जो आदाद शुमार हैं उनसे खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ये वेबसाइट है, यहाँ पर कोविड 19 का एक इन्फॉर्मेशन का सेक्शन मौजूद है जहाँ पर आपको कोरोना वायरस से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल और फिगर्स मिल सकते हैं और ऐसी बहुत सी मालूमात जिसे शायद जानने की आपको जरूरत है। अब बढ़ते हैं एक ऐसे मसले की तरफ जो कि आजकल हमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। फोन उठाएं तो व्हाट्सएप पर कोई ना कोई खबर है कोरोना वायरस से रिलेटेड, फेसबुक अपना ऑन करें, ट्विटर ऑन करें तो आपको कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई मैसेज वहां पर देखने को जरूर मिलता है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा फ्लो है जिसे इस वक्त फिल्टर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोग नुस्खे बता रहे हैं, बहुत से लोग मशवरे भी दे रहे हैं, ढेरों मालूमात हैं जिसको इकट्ठा करना, समझना और ये सोचना कि आखिर इसमें से काम की मालूमात कौन सी है, एक मुश्किल काम बनता जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ फारूकी। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी आसिफ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ पता नहीं चल रहा कौन सी सही है कौन सी गलत है, बंदा काम कहां से शुरू करे, कहां से समझना शुरू करे कि ये मैसेज ठीक है या ये बैड न्यूज है, फेक न्यूज है, क्या है?
देखिए, इस पे हमारे जो साथी हैं बीबीसी में उन्होंने काफी तहकीक की है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया भर में जो इस पे बहुत महारत रखती है, उनसे लोगों से बात की है, लेकिन जो उन्होंने सॉल्यूशंस बताए हैं वो बहुत आम फहम है, बहुत कॉमन सेंस की है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी खाला के बेटे के दोस्त ने मुझे एक तरीका बताया जिससे आपकी बीमारी को ठीक हो सकती है तो आप उस पर यकीन करेंगे? लेकिन अगर यही बात कोई, मैं आपको बताऊं कि किसी रिसर्च पेपर में आई है या किसी डॉक्टर ने बताई है, फिर आप उसको मान लेंगे? सो सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि आप उसका सोर्स समझने की कोशिश करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, व्हाट्सएप पे आ रही है या फेसबुक पे आ रही है, आप समझें कि वो आ कहां से रही है, उसके सोर्स तक पहुंचे। जब आप सोर्स तक पहुंचेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सोर्स इससे रेलिवेंट है या नहीं है। दूसरी जो बात अगेन कॉमन सेंस की है कि अगर आपको खुद शक हो रहा है उस बात पे कि पता नहीं यार चाय का एक कप पीने से क्या कोरोना वायरस ठीक हो सकता है, वाकई क्या ये सही हो सकता है? सो थिंक अबाउट इट। जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो फिर आप मजीद सर्च करेंगे और उस व्हाट्सएप की बात पे आप यकीन,
यानी कि पैनिक मोड में नहीं जाना चाहिए।
एग्जैक्टली, और पैनिक मोड में अमूमन ये होता है कि लोग आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे जज्बात से खेला जाता है, वहां पे कोई ऐसी चीजें आपको बताई जाती हैं जिससे आप खौफ का शिकार हो जाते हैं। तो पैनिक अगर नहीं होते आप तो इसका बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप वो फेक न्यूज जो है उसका शिकार नहीं होंगे। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब तक आप तस्दीक ना कर लें वो बात आगे ना।
सो बेसिक डूज एंड डोंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज यही है कि सोर्स क्या है, और उसके बाद अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद उसी चीज को शेयर किया जाए। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ी टेक्निकल होती हैं तो आप सजेस्ट करते हैं कि उसकी पहले रिसर्च कर लेना बेहतर ही रहेगा ऐसे हालात में?
देखिए, ज्यादातर जो देखने में आ रहा है कि जो फेक न्यूज आ रही है वो व्हाट्सएप पे आ रही है और उस पर कहा जाता है कि फलां साइंसदान ने या फलां प्राइम मिनिस्टर ने या फलां बंदे ने बात की है। आप गूगल कर ले,
सही,
आपको अगर उस बंदे ने वो बात कही होगी तो कहीं और सोर्सेज पे भी तो मौजूद होगी ना,
बिल्कुल,
वहां से आपको असल बात पता चलेगी।
ये बहुत काम की और बड़ी बेसिक सी बात थी जो आसिफ साहब फारूकी साहब आपने बताई, हमें बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त, जो भी अपना फोन खोलता है, जो भी व्हाट्सएप खोलता है, फेसबुक देखता है, ट्विटर देखता है, वहां पर कोई ना कोई ऐसी आपको खबर जरूर मिलती है। सो जस्ट प्लीज बी केयरफुल, पैनिक में मत आएं, रिसर्च करें और उसके बाद फिर बात को आगे लेकर जाएं। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल माशी और समाजी खतरा बनकर इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी हुई है, और इस शिकंजे में जैसे दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे बचे नहीं हैं, बल्कि वो काफी ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। उनका तलबा का जो तालीमी साल है वो काफी बुरी तरह से डैमेज भी हो रहा है और बहुत से स्टूडेंट्स जो है परेशान हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इब्तदाई तौर पर किए जाने वाले इकदाम में तालीमी इदारों को 5 अप्रैल तक बंद रखना भी शामिल था। इस जमीन में वफाकी वजीर तालीम जो है शफकत महमूद, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आती रही और उनका यह कहना था कि हायर एजुकेशन कमीशन के तावन से मुल्क में आला तालीमी इदारों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कराई जाएंगी ताकि तालिब इल्मों की तालीम का हर्ज ना हो। लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान लग रही है, क्या ये वाकई इतनी आसान भी है या उन स्टूडेंट्स को कुछ मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं? जिन स्टूडेंट्स से हमने बात की, जिनसे हम राबता करने में कामयाब हो गए मुश्किल हालात के बावजूद भी, उनका यही कहना था कि ये बात सुनने में ही आसान लग रही है, हमें वाकई बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो मुश्किलात क्या हैं, बेहतर यही होगा कि हम इन स्टूडेंट्स की जबानी ही उनकी कहानी सुने।
नाम अलीजा खान है और मेरा ताल्लुक गिलगित से है। एफसी कॉलेज लाहौर से मैं बैचलर्स कर रही हूँ मैस कम्युनिकेशन में। ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड जो भी मसले गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स को आ रहे हैं उस हवाले से मैं चंद बातें करना चाहूंगी। सबसे पहला जो मसला है वो है इलेक्ट्रिसिटी का मसला। दिन में सिर्फ आपको 4 से 5 घंटे बिजली मिलती है और उस वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग्स फिक्स्ड होती हैं, तो आपके लिए क्लासेस अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता। जो दूसरा मसला है वो है इंटरनेट का मसला, और ये बहुत बड़ा मसला है। गिलगित बल्तिस्तान के हर घर में इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। इंटरनेट ना होने की वजह से ना आप क्लासेस अटेंड कर पाते हो, ना आप अपनी प्रेजेंटेशंस कर पाते हो, ना आप अपने टाइम पे असाइनमेंट सबमिट कर पाते हैं। और जो हमारा इस दफा का जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होगा वो भी हमारे असाइनमेंट्स के बेसिस पे होगा। असाइनमेंट्स करना यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च के बगैर, इंटरनेट के बगैर, लाइब्रेरी फैसिलिटी के बगैर करना पॉसिबल नहीं होता।
मोहम्मद आजम है और मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, बलूचिस्तान में जिला जाफराबाद से, और मेरे विलेज का नाम है राजा खान भांगर। तो लॉकडाउन की सूरत हाल है, जैसे कि पाकिस्तान एक कोरोना वायरस जैसी वबा में फंस गया है जिसकी वजह से लॉकडाउन की गई है पूरे पाकिस्तान को, और इसमें स्टूडेंट्स को ये सफ़र करना पड़ रहा है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज से यहाँ तो आ गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज जो है वो उन्होंने छुट्टियाँ दे दी हैं, तो वो यहाँ पे आके वो एक ऐप है जूम के नाम से, वो उससे जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। मैं एक अपनी मिसाल बताता हूँ, मेरा घर अभी लॉकडाउन की सूरत हाल में मैं विलेज में रह रहा हूँ, तो मैं डेली 25 से 30 किलोमीटर सफर करता हूँ और मैं क्लास लेने सिटी आता हूँ, क्योंकि इंटरनेट विलेज में नहीं है। तो इस वजह से रास्ते में मुझे बहुत से सोल्जर्स, मतलब पुलिस मुझे रोकती रहती है, तो इसमें जो है ना हमें बहुत बुरे वक्त का ऐसे समझे सामना हो रहा है, एक हमारी लर्निंग इफेक्ट हो रही है इससे बहुत ज्यादा।
सालिका खान है और मैं BSIR कर रही हूँ। तकरीबन 2 वीक से हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है जिसमें बिल्कुल कोई लर्निंग नहीं हो रही है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, इंटरनेट इशू बहुत हो रहा होता है, कभी टीचर की तरफ से कभी स्टूडेंट्स की तरफ से, और कभी कभार तो हम ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे होते क्योंकि इतनी गंदी क्वालिटी होती है इंटरनेट की। तो हम चाहते हैं कि ये वाला टाइम जो 31 मई तक है इसको हम एज अ समर ब्रेक कंसिडर कर लें और 1 जून से बकायदा अपनी क्लासेस का आगाज करें, क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी फी दे चुके हुए हैं और जून में फिर से हमारी क्वार्टर फी आ जाएगी, तो इस तरह ना हमारा नुकसान हो ना हमारी एजुकेशन।
पाकिस्तान में ऑनलाइन जराए से तदरीसी अमल जारी मगर तुलबा को मसाइल का सामना, इसी खबर से रिलेटेड यही पूरी स्टोरी है। इस उनवान से आप बीबीसी उर्दू के जो वेब पेज है उस पर पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं। मुझे यकीन है कि वहां पर आपको मजीद कई ऐसे पॉइंट्स भी मिलेंगे जो शायद हम आपको यहां अभी इस वक्त पहुंचाने में कामयाब ना हो सके हों। हमारे इस खसूसी बुलेटिन के जरिए हमारी कोशिश यही है कि आपके जहनों में जो भी ऐसे सवाल हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं उनको आप हम तक पहुंचाएं और हम माहरीन से बात करने के बाद उनके बात आपको दें। तो इस वक्त आपके चंद सवाल हमारे सामने हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारी साथी इरफाना यासिर। इरफाना जो कि इन तमाम सवालों के जवाब माहिरीन से बात करने के बाद ही आप तक पहुंचाती हैं। इरफाना, आज के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो देखने में बहुत ही सिंपल है लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये वो चीजें जिन्हें दोहराते रहने की जरूरत है। तो पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी, जलील खान है, उन्होंने हम